नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम उन जगहों की कहानी में उतरेंगे जहां हम अपनी जिंदगियां बिताते हैं, हमारे घर, हमारे ऑफिस, हमारे शहर।
और इस सफर में हमारे गाइड होंगे एडम शाह और उनकी किताब है आधुनिक वास्तुकला। पर देखिए, ये सिर्फ इमारतों के डिजाइन की कहानी नहीं है, ये एक सपने की कहानी है। एक ऐसा सपना जहां आर्किटेक्ट्स सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान और एक नया समाज बनाना चाहते थे।
ये बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है। हम रोज इन इमारतों को देखते हैं, शहरों में ऊंची ऊंची कांच की बिल्डिंग्स, हमारे घरों में खुली किचन और बड़ी खिड़कियां, लेकिन हम शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि ये डिजाइन आए कहाँ से। ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, है ना? इसके पीछे एक पूरा दर्शन है, एक आंदोलन था।
बिल्कुल, और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज भी हम बेहतर आवास, स्मार्ट शहर और सामुदायिक जीवन जैसे सवालों से जूझ रहे हैं। ये किताब हमें दिखाती है कि 100 साल पहले कुछ लोगों ने इन सवालों के कितने साहसी जवाब देने की कोशिश की थी, और हाँ, कभी कभी कितने विवादास्पद जवाब भी।
तो आज हम उसी सपने, उसकी सफलताओं और उसकी शानदार विफलताओं की पड़ताल करेंगे।
चलिए करते हैं।
तो इस कहानी को शुरू करने से पहले इसके लेखक एडम शार से मिलते हैं। वो कौन है और क्यों उनकी बात सुनना जरूरी है?
एडम शार कोई आम किताबी विद्वान नहीं है, और यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है। वो न्यूकैसल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेकिन साथ ही वो एक प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट भी हैं।
अच्छा,
मतलब वो सिर्फ सिद्धांतों पर लिखते नहीं हैं बल्कि असल दुनिया में इमारतें डिजाइन भी करते हैं।
ओहो, तो वो थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों दुनिया में रहते हैं। इससे तो बहुत फर्क पड़ता होगा। वो सिर्फ ये नहीं बता रहे कि कौन सी इमारत कब बनी, बल्कि ये भी समझ रहे हैं कि उसे बनाने में क्या चुनौतियां आई होंगी।
एकदम सही। वो जानते हैं कि कागज पर जो अच्छा लगता है वो असलियत में कैसा काम करता है। इसीलिए वो ये सवाल नहीं पूछते कि आधुनिक वास्तुकला क्या दिखती है, वो ज्यादा गहरा सवाल पूछते हैं।
क्या
आधुनिक वास्तुकला क्या बनना चाहती थी, उसका मकसद क्या था, उसकी आत्मा क्या थी? ये किताब उस आंदोलन के इरादों की पड़ताल है।
तो फिर इस किताब का केंद्रीय विचार क्या है, अगर हमें एक लाइन में समझना हो कि आंदोलन किस बारे में था?
इसका केंद्रीय विचार यह है कि आधुनिक वास्तुकला 20वीं सदी की बड़ी उथल पुथल की सीधी पैदाइश थी। दो विश्व युद्ध, औद्योगिकरण, शहरों की बेतहाशा भीड़, इन सब ने पुरानी दुनिया को तोड़ दिया था।
उस दौर के आर्किटेक्ट्स ने सोचा कि जब दुनिया ही नहीं बन रही है तो इंसान के रहने का तरीका पुराना क्यों हो।
मतलब वे सिर्फ डिजाइनर नहीं थे, वे खुद को समाज सुधारक मान रहे थे।
हाँ बिल्कुल, उनका मानना था कि वे एक नए इंसान के लिए एक नई दुनिया बना सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जो इतिहास के भारी भरकम बोझ से, गैर जरूरी सजावट से और सामाजिक भेदभाव से आजाद हो। ये किताब इसी वैचारिक डीएनए की पड़ताल करती है। ये सफेद डब्बों से कहीं ज्यादा गहरी चीज थी।
तो फिर शुरुआत कहाँ से करें?
इस आंदोलन की बुनियाद में सबसे पहला और बड़ा आइडिया क्या था?
सबसे बड़ा और क्रांतिकारी आइडिया था मुक्ति का, लिबरेशन। अतीत की भारी भरकम नक्काशीदार, अंधेरी और घुटन भरी इमारतों से आजादी। जरा पुराने विक्टोरियन घरों के बारे में सोचिए, छोटे छोटे कमरे, अंधेरे गलियारे, भारी पर्दे। आधुनिकतावादियों ने कहा, ये सब हटाओ।
और ये सिर्फ दिखावे की आजादी नहीं थी, है ना? इसका लोगों के स्वास्थ्य और मन पर भी सीधा असर पड़ता होगा।
बिल्कुल, ये एक स्वास्थ्य सुधार आंदोलन जैसा था। बड़ी बड़ी खिड़कियां ताकि घर में धूप और ताजी हवा आए, खुली जगह जिसे हम आज ओपन प्लान कहते हैं ताकि परिवार एक साथ रह सकें, और साफ सुथरी सतहें जिन्हें आसानी से साफ किया जा सके ताकि बीमारियां न फैलें।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद ले कॉर्बूजिए की विला सवॉय है। उसे रहने की मशीन कहा गया था। ये सुनने में थोड़ा ठंडा और रोबोटिक लगता है।
हाँ, ये जुमला बहुत बदनाम हुआ है, पर शार समझाते हैं कि कॉर्बूजिए का मतलब ये नहीं था कि इंसान रोबोट की तरह रहें। उनका मतलब था कि एक घर को भी एक अच्छी मशीन की तरह कुशल होना चाहिए, जो अपने काम को फ्लॉलेसली करे। और घर का काम क्या है?
इंसान को एक स्वस्थ आरामदायक माहौल देना।
एकदम, और प्रेरणा भी लेना। विला सवॉय को देखिए, वो जमीन से ऊपर उठी हुई है, चारों तरफ हरियाली है, छत पर बगीचा है। वो प्रकृति से जोड़ने वाली मशीन थी, तोड़ने वाली नहीं।
ठीक है, तो ये मुक्ति व्यक्ति के स्तर पर थी, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, ये एक सामाजिक आंदोलन था। तो इस खुलेपन, इस रोशनी को पूरे समाज तक कैसे पहुंचाया गया?
और यही हम इसके दूसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण विचार पर आते हैं, सामाजिक प्रोजेक्ट। ये आंदोलन दिल से राजनीतिक था, آرکیٹیکٹس کا ماننا تھا کہ وہ ڈیزائن کے ذریعے ایک بہتر اور زیادہ برابری والا سماج بنا سکتے ہیں.
اس کا کوئی ادھارن؟
ہاں، جرمنی کے سیڈ لنگن میں یہ سب سے صاف دکھتا ہے. یہ مزدور ورگ کے لیے بنائے گئے بڑے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹس تھے، اور ان کا لکشے صرف لوگوں کو سر پر ایک چھت دینے نہیں تھا.
تو پھر کیا تھا
لکش؟ تھا ایک نئے طرح کا ساموہک اور سوستھ جیون بنانا. ہر گھر میں اپنی بالکنی، سورج کی روشنی، کھیلنے کے لیے پارک، سامودائک کیندر. یہ پہلی بار تھا جب اچھی ڈیزائن کو صرف امیروں کا حق نہیں بلکہ ہر ناگرک کا ادھیکار مانا گیا.
یہیں پر وہ جرمن شبد آتا ہے ایگزسٹنس منیمم.
ہاں، نیونتم جیون یاپن. یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے، لیکن اس سمے یہ کرانتیکاری وچار تھا. اس کا مطلب تھا کہ ہر ناگرک کو ایک ترک سنگت، سوچھ اور کشل نیونتم آواز کا ادھیکار ہے. لیکن اسی مہان وچار میں ایک خطرہ بھی چھپا تھا.
کیا خطرہ؟ یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے.
خطرہ تھا نیانترن کا، ایک روپتا کا. جب آپ سب کے لیے ایک آدرش اور کشل طریقہ طے کرنے لگتے ہیں تو آپ انجانے میں لوگوں کی ویکتیگت پسند اور سانسکرتک وویدھتا کو ختم کر دیتے ہیں. ہر کوئی ایک ہی طرح کے فلیٹ میں کیوں رہے؟ کیا ایک ہی ڈیزائن سب کے لیے کام کر سکتا ہے؟ یہ سوال بعد میں اس آندولن کے لیے بہت بڑی چنوتی بنا.
یہ ایک بہت ضروری بات ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ ہمیں تیسرے وچار کی طرف لے جاتا ہے، انڈسٹری اور مشین. کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر گھر بنانے کے لیے تو فیکٹری کے طریقوں کی ضرورت پڑی ہوگی.
ایک دم. اس دور کے آرکیٹیکٹس مشین کو لے کر ایک ہی ساتھ موہت بھی تھے اور ڈرے ہوئے بھی تھے. ایک طرف انہوں نے کارخانوں، سمندری جہازوں اور ہوائی جہازوں کی صاف ستھری کشل ڈیزائن سے پریرنا لی. اسٹیل، کانکریٹ اور بڑے شیشے جیسے اودیوگک مٹیریل کا استعمال صرف ضرورت نہیں بلکہ ایک نئے یگ کا اعلان تھا.
پر ڈر کس بات کا تھا؟
ڈر تھا کہ مشین اور بڑے پیمانے پر اتپادن انسانیت کو ختم کر دے گا، ہر چیز کو بے جان اور ایک جیسا بنا دے گا. اس لیے انہوں نے ایک ورودھاواس کو سلجھانے کی کوشش کی. مانکیکرن اور پری فیبریکیشن کا استعمال کر کے ایسے گھر بنانا جو اچھی ڈیزائن والے ہوں اور سب تک پہنچ سکیں لیکن پھر بھی مانویہ لگیں.
مطلب وہ فیکٹری کے طریقے سے ایسے گھر بنانا چاہتے تھے جو فیکٹری جیسے نہ دکھیں.
ہاں بالکل، اور یہ ایک بہت مشکل سنتولن ہے.
اور یہ مجھے اس عام دھارنا پر لاتا ہے کہ آدھونک واستو کلا مطلب کانکریٹ کے جنگل. لیکن شار کی کتاب اس مِتھک کو توڑتی ہے نا. وہ پرکرتی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں.
ہاں، اور یہ اس آندولن کا سب سے غلط سمجھا گیا پہلو ہے. امریکہ میں فرینک لوئڈ رائٹ کو دیکھیے اور ان کا آرگینک آرکیٹیکچر کا وچار. ان کا سب سے مشہور گھر فالنگ واٹر صرف ایک جھرنے کے اوپر بنا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسی زمین، اسی چٹان اور اسی جھرنے سے اگایا ہو. وہ عمارت اور پرکرتی کو ایک کر دیتا ہے.
یا فنلینڈ کے آرکیٹیکٹ آلور آلٹو، جنہوں نے لکڑی اور پراکرتک گھماودار آکاروں کا استعمال کیا. انہوں نے دکھایا کہ آدھونکتا ٹھنڈی اور کٹھور ہو یہ ضروری نہیں، وہ گرم اور مانویہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ آندولن کوئی ایک مونولیتھک چیز نہیں تھی.
بالکل، اس کی کئی دھارائیں تھیں، اور اسی سے ہم پانچویں بڑے وچار پر آتے ہیں. کیا یہ سچ میں ایک انتراشٹری شیلی تھی، انٹرنیشنل سٹائل؟ یہ نام تو بہت مشہور ہوا.
ہاں، لگتا ہے جیسے یہ ایک گلوبل سٹائل تھا جو ہر جگہ ایک جیسا تھا. پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا.
شار کا ترک ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سرلیکرن ہے. یہ لیبل اصل میں امریکہ میں ایک پردرشنی کے لیے گڑا گیا تھا، اور اس نے بڑی چالاکی سے آندولن کے سماجک اور راجنیتک ایجنڈے کو ہٹا دیا. اس نے آدھونکتا کو اس کے سماجوادی سپنوں سے کاٹ کر صرف ایک سٹائل بنا دیا.
صرف ایک سٹائل؟
ہاں، ایک ایسا سٹائل جو کارپوریٹ امریکہ کے لیے ایک دم صحیح تھا، ان کی اونچی اونچی عمارتوں کے لیے.
تو یہ کہنا کہ انٹرنیشنل سٹائل ایک امریکی کارپوریٹ لیبل تھا، یہ تو پورے آندولن کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیتا ہے. مطلب جو ہمیں ایک ویشوک کلا آندولن لگتا تھا، وہ اصل میں ایک برانڈنگ ایکسرسائز بھی تھی.
کافی حد تک سچائی یہ ہے کہ آدھونکتا نے دنیا بھر میں الگ الگ روپ لیے. برازیل میں آسکر نیمیر کے کام کو دیکھیے جو کتنا کاویاتمک اور گھماؤدار ہے، یا ہمارے اپنے بھارت میں لیک اور بوزیے کا چنڈی گڑھ. وہاں آدھونک سدھانتوں کو بھارت کی جلوایو، دھوپ اور ایک نئے آزاد راشٹری آکانکشاؤں کے ساتھ ملایا گیا. یہ کوئی ایک سائز سب پر فٹ والا فارمولا نہیں تھا.
تو اس سپنے کا انت کیسے ہوا؟ کیونکہ آج ہم آدھونکتا کو اکثر ایک اسفل پریوگ کے روپ میں دیکھتے ہیں.
انت کہنا شاید صحیح نہیں ہوگا، لیکن ہاں، بیسویں صدی کے مدھ تک اس کی بڑی آلوچنا شروع ہو گئی. اس کی پرتیکاتمک مرتیو 1972 میں مانی جاتی ہے، جب امریکہ کے سینٹ لوئس میں پرویٹ ایگو نام کے ایک وشال ہاؤسنگ پروجیکٹ کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا گیا.
اسے اڑا دیا گیا؟
ہاں، جس سے غریبوں کے لیے ایک آدرش گھر بنانے کے سپنے کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، वो अपराध, गरीबी और निराशा का केंद्र बन गया था। ये उसके सामाजिक यूटोपिया की सबसे बड़ी विफलता का प्रतीक बन गया।
ये सोचना भी डरावना है कि इतने अच्छे इरादों से बनाया गया प्रोजेक्ट लोगों के लिए एक कौशमार बन गया। ये दिखाता है कि कागज पर जो योजनाएं अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में उनका नतीजा कितना अलग हो सकता है।
बिल्कुल, लेकिन शार का निष्कर्ष ये है कि आंदोलन मरा नहीं है। इसके पूछे गए मूल सवाल, किफायती आवास, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, समुदाय कैसे बनाए, आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। इसके विचार, यहां तक कि इसकी विफलताएं भी आज हमारी दुनिया को आकार देती हैं। ये एक बातचीत है जो आज भी जारी है।
तो इस पूरी कहानी से हमारे आज के लिए क्या मुख्य संदेश है? मेरे लिए पहला और सबसे बड़ा सबक यह है कि वास्तुकला सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। यह सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है। भारत में हम इसे आज़ादी के बाद बने चंडीगढ़ में देखते हैं, जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पंडित नेहरू के सपनों के एक नए आधुनिक भारत का बयान था।
दूसरा बड़ा सबक है मुक्ति और नियंत्रण का विरोधाभास। आधुनिक अपार्टमेंट्स की साफ व्यवस्थित योजना हमें पुराने तंग घरों से आज़ादी देती है, लेकिन कभी कभी यही एक रूपता एक पारंपरिक मोहल्ले की जीवंता, उस अपनेपन को छीन सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कुशलता और समुदाय के बीच सही संतुलन कैसे बनाएं।
तीसरा, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो है अंतर्राष्ट्रीय शैली के मिथक का टूटना। आधुनिकता की कई क्षेत्रीय बोलियां थी। जैसे हर भारतीय खाना करी नहीं होता, वैसे ही हर आधुनिक इमारत एक जैसी नहीं थी।
एकदम सही। और आखिरी संदेश है प्रकृति का अनदेखा महत्व। हम आधुनिकता को अक्सर कॉन्क्रीट से जोड़ते हैं, लेकिन इसके सबसे अच्छे उदाहरण जैसे फॉलिंग वाटर प्रकृति के साथ गहरे एकीकरण के बारे में है। ये आज के हमारे भीड़भाड़ वाले प्रदूषित शहरों के लिए एक बहुत जरूरी सबक है कि कैसे हम विकास और प्रकृति को दुश्मन नहीं बल्कि साथी बना सकते हैं।
चलिए अब कुछ उन विचारों या कोट्स पर बात करते हैं जो इस आंदोलन का सार है। पहला, लॉ कॉर्बूजिए का वही प्रसिद्ध कथन, घर रहने की एक मशीन है। जैसा हमने पहले कहा, ये सुनने में बहुत कठोर लगता है।
हाँ, लगता है जैसे इंसानों के लिए नहीं रोबोट के लिए घर बना रहे हो। लेकिन अगर हम इसके इरादे को समझें तो ये बहुत मानवीय है। जैसे एक अच्छी कार हमें कुशलता और आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वैसे ही एक अच्छा घर जीवन की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करना चाहिए। इरादा इंसानियत को खत्म करना नहीं बल्कि उसे बेकार के कामों से मुक्त करना था।
अगला विचार है लुई सुलिवन का, स्वरूप कार्य का अनुसरण करता है, फॉर्म फॉलोज फंक्शन।
बिल्कुल,
ये तो शायद इस आंदोलन का मूल मंत्र है।
बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब है कि किसी चीज का डिजाइन उसकी सजावट से नहीं बल्कि उसके उद्देश्य से तय होना चाहिए। एक कुर्सी सुंदर दिखने से पहले बैठने के लिए आरामदायक होनी चाहिए। इस एक विचार ने आर्किटेक्ट्स को सैकड़ों सालों की गैर जरूरी सजावट से मुक्त कर दिया।
और फिर मीस वेंडेर रोहा का मंत्र, कम ही ज्यादा है। ये तो आज भी हम बहुत सुनते हैं।
हाँ, पर इसका मतलब खालीपन या कंजूसी नहीं है। इसका मतलब है सरलतम साधनों से सबसे ज्यादा प्रभाव पैदा करना, 10 चीजों की जगह 3 सही चीजों का इस्तेमाल करना। ये सादगी में छिपी सुंदरता और शक्ति को खोजने के बारे में है।
और आखिर में एल्वर एल्टो का ये विचार मुझे बहुत पसंद आया, वास्तुकला संस्कृति से संबंधित है, सभ्यता से नहीं। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि आधुनिकता के सार्वभौमिक सिद्धांत तो थे, जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जो सभ्यता का हिस्सा है, लेकिन किसी इमारत को सफल होने के लिए उसे स्थानीय लोगों के जीवन के तरीके, उनकी जरूरतों और वहां के माहौल, मतलब संस्कृति में ढलना पड़ता है। यह वैश्विक और स्थानीय के बीच संतुलन बनाने की बात है।
तो हम इन सब विचारों का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
सबसे आसान तरीका है अपने आसपास के प्रति ज्यादा जागरूक होना। अगली बार जब आप किसी शीशे वाले ऑफिस में हों तो सोचें, क्या ये खुला ऑफिस सच में सहयोग को बढ़ावा देता है या ये सिर्फ लागत बचाने का तरीका है? ये डिजाइन हमारे व्यवहार को चुपचाप कैसे प्रभावित कर रहे हैं?
यह आज के बड़ी बहसों को भी दिशा देता है। जब हम भारत में किफायती आवास, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो हम उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनके प्रयोग, सफल और असफल दोनों, हमें लागत, गुणवत्ता और समुदाय की भावना के बीच संतुलन बनाने के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं।
मैं हमारे अपने घरों में भी सादगी, प्राकृतिक प्रकाश और बिना क्लटर वाले कार्यात्मक स्थानों की जो इच्छा हम आज रखते हैं वो सीधे इसी आंदोलन से आती है। मिनिमलिज्म का जो ट्रेंड हम आज देखते हैं उसकी गहरी जड़ें यही हैं।
तो इस पूरी चर्चा के बाद आपके लिए सबसे बड़ा सबक या अंतिम विचार क्या है?
मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि इमारतें कभी तटस्थ नहीं होती। वे खामोश चीजें नहीं हैं। वे इस बारे में विचारों, विश्वासों और सपनों से भरी होती हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए। आधुनिक वास्तुकला एक बेहतर दुनिया बनाने की एक त्रुटिपूर्ण, थोड़ी भोली लेकिन अविश्वसनीय रूप से साहसी और ईमानदार कोशिश थी।
और मेरे लिए ये बात बहुत दिलचस्प रही कि इसके मूल प्रश्न आज भी कितने जिंदा हैं। हम आज भी टेक्नोलॉजी, बढ़ते शहरीकरण और सामाजिक समानता जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। आधुनिकता हमें सारे जवाब नहीं देती, लेकिन ये हमें सही सवाल पूछने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा जरूर देती है। ये कोई मृत शैली नहीं है, ये एक जारी बातचीत है जिसमें हम सब हिस्सा ले रहे हैं।
तो अगली बार जब आप किसी सपाट छत वाली, बड़ी खिड़कियों वाली इमारत को देखें, तो शायद आप उसे सिर्फ एक बिल्डिंग की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह देखेंगे। एक बेहतर भविष्य बनाने के एक महत्वाकांक्षी प्रयोग की कहानी जो आज भी हमारे चारों ओर लिखी जा रही है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।